आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के साइंस का 13th चैप्टर है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए हमने ये सीखा था कि हम क्या करते हैं, अगर या तो हम मैग्नेट को मूव कराएं या फिर हम हमारे वायर को या फिर किसी कंडक्टर को मूव कराएं, तो उससे क्या होता है कि दूसरे हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। तो या तो आप ऐसा करो कि आप कंडक्टर को मूव कराओ या फिर आप मैग्नेट को मूव कराओ या फिर आप अपने कंडक्टर को स्टेशनरी रखो लेकिन उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को विथ टाइम चेंज करो, तो उससे भी कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हमने दो एक्टिविटीज भी कर ली हैं, एक्टिविटी 13.1 और एक्टिविटी 13.9। उसके बाद हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखा है जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि अगर हम लोग को पता हो कि किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है, वो हम लोग हमारे राइट हैंड के थंब से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा फोर फिंगर जो होता है राइट हैंड का वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। तो इस तरीके से राइट हैंड रूल का यूज करके हम बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है और उसके लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। हम लोग को पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है और किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है। तो हम बता देंगे कि कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि अगर हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस बनाया गया है जिसमें कि हम कंडक्टर को मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 236 पर और आप देखो फिगर 13.19। इसमें आप लोगों को एक जो सेटअप दिख रहा है, इसमें आपको एक नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए है कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये नॉर्थ साउथ पोल आपको दिख रहा है ये बेसिकली मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस रीजन में जहां पर आपका जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसके थ्रू करंट कैरी हो जाएगा उसी में जनरेट होगा। अभी शुरुआत में उसमें कोई करंट नहीं है। तो ये जो कंडक्टर है इट हैज द कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कब? तब वो मूव करे अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ये लूप है ये बेसिकली एक कंडक्टर है और इसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकली रोटेट कराते हैं। इसको हम मैकेनिकली रोटेट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से इसके अंदर करंट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लूप है ये ABCD लूप से बना है और ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, बेसिकली कंडक्टिंग कॉइल है ये, और इसके दो एंड्स हैं, AB आर्म है एक और दूसरा CD आर्म है जो कि एक एंड AB आर्म का है और एक एंड CD आर्म का है। और जो AB वाला एंड का आर्म है वो जिस ब्रश से जुड़ा है, कंडक्टिंग ब्रश से जुड़ा है, वो B1 से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। और इसके भी पहले हमारा ये जो आर्म AB है, हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल का आर्म AB जो है ये क्या कर रहा है, ब्रश B1 से जुड़ने से पहले ये एक रिंग से अटैच्ड है जिस रिंग का नाम रखा गया है R1। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ा था, वहां पर आपने जो रिंग्स देखी थी वो स्प्लिट रिंग्स थी, आधी रिंग्स थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर में रिंग्स कंप्लीट रिंग्स हैं। तो यहाँ पर दो रिंग्स हैं, एक है रिंग R1, दूसरी है रिंग R2। रिंग R1 से जो आपकी आर्म AB है, ABCD कॉइल की आर्म AB है, वो आपके रिंग R1 से जुड़ी है, और यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है ये क्या कर रहा है, ये रिंग से जुड़े होने की वजह से ये मूव करने की, रोटेट होने की कैपेसिटी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्म AB है वो हमारे रिंग R1 से जुड़ा है, और ये जो रिंग R1 है ये रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। और ये किसके अराउंड रोटेट करेगा, एक एक्सल के अराउंड रोटेट करेगा। एक आप लोगों को हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के अराउंड रिंग्स जो है वो रोटेट करेंगी। अब ये हमारा आर्म AB हमारी रिंग R1 से जुड़ा है और ये रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। R1 से जुड़ने के बाद ये ब्रश B1 से जुड़ा है, लेकिन ब्रश B1 जो है उसके साथ R1 का कॉन्टैक्ट जो है वो परमानेंट नहीं रहता, तब तक रहता है जब तक वो कॉन्टैक्ट में रखेंगे तभी तक। लेकिन ब्रश जो है वो सिर्फ एक ब्रश B1 जो है वो सिर्फ एक लिंक का काम कर रहा है बिटवीन लूप ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, और जो दूसरा एक और सेटअप आपको दिख रहा है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, इस गैल्वेनोमीटर के सेटअप और आपके लूप ABCD के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश कर रहा है वो हमारा ब्रश B1 कर रहा है। और ये जो ब्रश B1 है ये सिर्फ हमारी आर्म AB से जुड़ी हुई है। दूसरी वाली जो आर्म की अगर बात की जाए, आर्म CD, ये आर्म CD जो है ये जुड़ी रहती है हमारी रिंग R2 से, और R2 भी रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है अराउंड दी एक्सल। और जब ये रिंग R2 से जुड़ा है तो कभी कभी जो सिचुएशन ऐसी आती है जब वो टच होता है ब्रश B2 से, तो वहां पर जो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है वो ब्रश B2 कर रहा है बिटवीन आर्म CD एंड दी सेटअप जिसमें गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सर्किट सा बन गया है, एक तो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और दूसरा एक सर्किट जैसा एक सेटअप सा है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, मैकेनिकली आप मैकेनिकली किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं लूप ABCD जो है आपकी कंडक्टिंग लूप, इसको आपको रोटेट करना है। आप हाथ से करिए या फिर आप जो डैम बनते हैं टर्बाइंस मूव करती हैं, तो आप किसी तरीके से भी इसको मैकेनिकली मूव करेंगे लूप ABCD को। और यहाँ पर लूप के मूव करने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे ABCD के लूप के अंदर। और उसमें भी किस तरीके से होता है, जो आर्म AB है जब वो ऊपर की ओर मूव करेगी और हमारा CD आर्म जो है वो नीचे की ओर मूव करेगा, तो ऐसे में करंट जो इंड्यूस होगा हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर में वो आर्म AB में कुछ इस तरीके से होगा कि करंट विल मूव फ्रॉम A to B और करंट विल मूव फ्रॉम C to D इन आर्म CD। तो इस तरीके का करंट इंड्यूस होगा अगर हमारी आर्म AB जो है वो मूव अप कर रही हो और आर्म CD जो है वो मूव डाउन कर रही हो, इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस होगा, जो करंट जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आर्म AB में A से B की ओर होगी और आर्म CD में C से D की ओर होगी। तो ABCD इस तरीके से जो करंट होगा वो इंड्यूस होगा। अब अगर आप ऐसा करें कि आप बहुत से रेक्टेंगुलर लूप्स रखें या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, बहुत बार आप लपेट लपेट के रेक्टेंगुलर लूप्स का फॉर्मेशन करें, तो आप मल्टीपल लूप्स बनाने की वजह से करंट जो है वो ज्यादा इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो द करंट जनरेटेड जो होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हमारे रेक्टेंगुलर लूप में किस तरीके से करंट जनरेट हुआ है। अब अगर करंट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to C, फिर C से D, तो यहाँ पर जो करंट हमारे एक्सटर्नल सर्किट में एंटर करेगा जिसमें गैल्वेनोमीटर है, वो कहाँ से एंटर करेगा, वो C से D यानी कि ब्रश B2 से एंटर करेगा। तो यहाँ पर करंट हमारे गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट के अंदर B2 से एंटर करेगा और B1 से लीव करेगा। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये तो तब की सिचुएशन थी जब आर्म AB जो है वो ऊपर मूव कर रहा था और आर्म CD नीचे मूव कर रहा था। अब क्या हुआ कि रोटेशन हो गई, आधी रोटेशन हो गई। आधी रोटेशन होने के बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी कि अब CD जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देगा और ए बी जो है वो नीचे मूव करना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्शंस जो होंगी करंट इंड्यूस्ड की, वो पहले की सिचुएशन के मुकाबले अब बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। तो पहले किस तरीके से करंट इंड्यूस हुआ था, पहले करंट इंड्यूस हुआ था फ्रॉम ए टू बी, आर्म ए बी में फ्रॉम ए टू बी करंट इंड्यूस हुआ था। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, करंट जो इंड्यूस होगा वो होगा फ्रॉम बी टू ए, और इस बार जो आर्म सी डी है उसमें किस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, फ्रॉम डी टू सी। तो करंट इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन थी वो बदल जाएगी। और अगर हम ओवरऑल लूप के अंदर की बात करें, जो रेक्टेंगुलर लूप है, तो उसमें ओवरऑल किस तरीके से हो जाएगा करंट, करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू सी, फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम बी टू ए। तो डी सी बी ए इस तरीके से करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बार सेकेंड सिचुएशन में जो करंट एंटर करेगा वो ब्रश बी वन से करेगा। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि आधी रोटेशन के बाद गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन जो हो जाएगी वो राइट की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरीके से करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि पोलैरिटी चेंज होती जा रही है। हमारे रेक्टेंगुलर लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी पोलैरिटी हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हर आधे रोटेशन के बाद ये अपना डायरेक्शन बदलता है। और इसीलिए हम इस डिवाइस को एसी जनरेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और अल्टरनेटिंग करंट ही आपके घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। जो आपकी बैटरीज वगैरह होती हैं, जो आपकी टॉर्च में लगती हैं, ये वाली बैटरीज जो होती हैं इनके अंदर डायरेक्ट करंट होता है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं डायरेक्ट करंट के और अल्टरनेटिंग करंट के। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक जनरेटर से डायरेक्ट करंट जनरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंप्लीट रिंग नहीं लेते हैं, स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज किया जाता है अगर हम लोगों को डायरेक्ट करंट जनरेट कराना है यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर। और आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था किस तरीके से जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है वो फुल रोटेशन कराने में हेल्प करता है। तो फुल रोटेशन होती है इसीलिए डायरेक्ट करंट जनरेट होता है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन जो है करंट की वो सेम डायरेक्शन रहती है, यूनिडायरेक्शनल, सिंपल एक डायरेक्शन रहती है, चेंज नहीं होती है बार बार। लेकिन हमारे अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद बदल जाती है। अगर हम लोग डायरेक्ट करंट जनरेट करा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से, तो ऐसे जनरेटर को हम डीसी जनरेटर कहते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो सिंगल रहता है, वो कभी अल्टरनेट नहीं करता है। लेकिन अल्टरनेट करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता रहता है पीरियोडिकली, हर कुछ समय के बाद में हमारे अल्टरनेट करंट का डायरेक्शन जो है वो पलटता रहता है। हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो हर 1/100 सेकेंड पर पलटते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आएगा, वो आएगा 50 हर्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्स। अब हमारे घरों के अंदर जो बिजली की सप्लाई आती है उसमें अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने का रीजन है, रीजन ये है कि डायरेक्ट करंट की बजाय अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि दूर दूर तक आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं और पावर लॉस बहुत कम होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो पेज नंबर 237 पर है, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हमने बात की हुई है प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि किस सिद्धांत पर बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, किस बात को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये आपसे बात की गई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये यूज किया जाता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का जिसके ऊपर ये काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन है नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के सोर्सेज के नाम बताइए। तो आपको बताया गया है कि जो बैटरी होती है या फिर जो सेल होता है आपके टॉर्च के जो सेल्स होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो डायरेक्ट करंट का काम करते हैं। तो एक तो आपके जो ये बैटरीज या फिर सेल्स होते हैं टॉर्च के ये, और दूसरा डीसी जनरेटर, ये दोनों ही डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्सेस प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक तो एसी जनरेटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा जो बिजली के पावर प्लांट्स होते हैं ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। ऑप्शंस में आप लोगों को दिए हैं 2 revolution, 1 revolution, हाफ रेवोल्यूशन या 1/4 revolution। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी अभी कि जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस की डायरेक्शन जो है वो कब पलटती है, हर आधे रेवोल्यूशन पे पलटती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देखेंगे कि किस तरीके से बिजली आती है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कौन कौन सी वायर्स क्या क्या काम आती हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है आपके घर के अंदर सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो कहाँ से आती है, एक मेन्स सप्लाई होती है जिसे आप नॉर्मली मेन्स भी कह देते हैं। तो एक मेन्स सप्लाई आती है जो कि आपकी जो पावर बोर्ड्स होती हैं वहां से आती है, आपकी जो भी बिजली का जिस कंपनी से आपने बिजली ली हुई है तो उनके कंपनी से आपके घरों में मेन्स सप्लाई आती है। एक मोटी तार आती है जिस तार के अंदर क्या होता है, ये तार जो है ये एक बहुत मोटी इंसुलेशन में कवर्ड होती है, और इस तार के अंदर दो अलग तरीके के तार होती हैं। एक जो ज्यादातर देखा जाता है रेड कलर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कलर से मोस्टली कंपनीज जो हैं वो लाइव वायर को कलर देती हैं, रेड कलर देती हैं लाइव वायर को जिसमें पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है। आप लोगों को पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट हमेशा तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल इस तरीके से होना पड़ेगा। तो एक में क्या होता है कि हाईएस्ट पोटेंशियल होता है जिसे हम पॉजिटिव वायर भी कह देते हैं या फिर इसे हम लाइव वायर कहते हैं, और ये लाल कलर की इंसुलेशन कवर में होती है जनरली। दूसरी जो वायर होती है ये ब्लैक कलर की इंसुलेशन में होती है, इसे हम न्यूट्रल वायर कह देते हैं या फिर नेगेटिव कह देते हैं। इसकी पोटेंशियल जो होती है बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों वायर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो हमारी कंट्री में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आपके घरों में आपकी जो मेन्स सप्लाई आ रही है, मेन्स जो वायर है उससे जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है, क्योंकि इंडिया में हर एक घर के अंदर 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है। अब ये जो मेन्स सप्लाई वायर आ रही है आपके घर में, या तो ऐसा हो सकता है कि इसको अंडरग्राउंड केबल के थ्रू आपके घरों में पहुंचाया जा रहा है, पावर स्टेशन से आपके घर में जो बिजली पहुंचाई जा रही है, मेन सप्लाई जो पहुंचाई जा रही है, हो सकता है कि इसे अंडरग्राउंड केबल से पहुंचाया जा रहा हो, या फिर जगह जगह पर बिजली के पोल्स भी लगाए जाते हैं तो वहां से भी सप्लाई दी जाती है लोगों के घरों के अंदर। तो यहाँ पर ये बात हो गई। उसके बाद आपके घर में ये जो मेन सप्लाई आ गई है इसकी वायर्स के बारे में आपने देख लिया। अब क्या होगा कि आपके घर में अलग अलग अप्लायंसेस से कनेक्शन करने के पहले ये मेन सप्लाई जो होती है ये आपकी बिजली की मीटर बोर्ड जो है उसके अंदर जाती है, और उसके अंदर जाने के पहले भी इसको एक फ्यूज से जोड़ा जाता है। इसको फ्यूज से जोड़ने के पीछे का कारण ये है कि अगर कभी बहुत ज्यादा करंट आ जाए, इन केस अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो उससे क्या होगा कि आपके किसी तरीके का एक्सीडेंट ना होने पाए, फ्यूज ही जो होगा वो पिघल जाएगा, तो घर के अंदर हाई अमाउंट की करंट नहीं पहुंचेगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर बहुत हाई करंट आ जाती है तो करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए मीटर के अंदर हमारे मेन वायर को पहुंचाने के पहले ही उसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज लगा दिया वायर में, मीटर में पहुंचा दिया। अब मीटर से क्या होगा कि वो वायर जो है उसको अलग अलग जगह पर अब हम सप्लाई करेंगे, करंट जो है वो अलग अलग घर में सप्लाई करेंगे, अलग अलग रूम में सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमारे मीटर बोर्ड के पास में बहुत सारे मेन स्विचेस लगे होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा हर एक कमरे का जो मेन स्विच होता है वो आपके मीटर के बोर्ड के पास लगा रहता है। तो बहुत से स्विचेस लगे होते हैं
और ये जो स्विचेस हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं से वायर्स जो होती है वो कनेक्ट होकर के हर एक रूम में इन वायर्स को पहुंचाया जाता है और उससे जोड़ करके अप्लायंसेस में हम करंट पहुंचाते हैं। कई बारी ये देखा जाता है कि हम जो करंट सप्लाई करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, सेपरेट सर्किट्स बना देते हैं। एक सर्किट तो ऐसा होता है जिसमें 15 एम्पेयर की करंट फ्लो करती है और इस 15 एम्पेयर की करंट फ्लो करने वाली वायर से हम उन अप्लायंसेस को जोड़ते हैं जिनकी करंट की रेटिंग हायर होती है, जैसे कि आपके गीजर्स हो गए या फिर आपके कूलर्स हो गए, एयर कूलर्स हो गए, या फिर आपके एयर कंडीशनर्स हो गए या फिर हीटर्स हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनको करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे अप्लायंसेस को हम 15 एम्पियर वाली जो हमने एक सेपरेट वायर बनाई हुई है उससे जोड़ते हैं। सिमिलरली हम एक और सेपरेट सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर हम 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं और इस वायर के अंदर जिसके अंदर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इससे हम उन अप्लायंसेस को जोड़ते हैं जिनको कम करंट चाहिए, जैसे कि बल्ब हो गया या फिर नॉर्मल फैंस हो गए। तो ये हम लोग 5 एम्पियर की जो वायर आ रही है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उस वायर से हम जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शंस करते हैं। तो एक वायर तो ऐसी होती है जो लाइव वायर होती है, उसके अंदर करंट आता है हाई पोटेंशियल पर, और दूसरी वायर कौन सी होती है, वो न्यूट्रल वायर होती है जिसके अंदर लो पोटेंशियल का करंट आता है। उसके बाद एक और वायर होती है जिसको हम ग्रीन कलर के इंसुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वायर होती है ये अर्थिंग की वायर होती है, आप लोगों ने सुना होगा हम लोग अर्थिंग भी बनाते हैं। जब बिजली का कनेक्शन घरों में किया जाता है तो अर्थिंग बनाई जाती है। अर्थिंग क्या होता है, आपके अलग अलग अप्लायंसेस में मान लो कि कभी क्या हो जाए, करंट की लीकेज हो जाए तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। तो आपको शॉक ना लगे इसके लिए क्या करते हैं, एक वायर, एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ी जाती है, ग्रीन कलर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वायर क्या करती है, इससे जोड़ करके ये वायर, इसका कनेक्शन बेसिकली आपके घर के बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर एक मेटलिक प्लेट से इस वायर को जोड़ते हैं ताकि अगर कभी करंट का लीकेज हो जाए तो ये सारा का सारा करंट जो है वायर से होते हुए धरती के अंदर चले जाए और आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो ये फायदा होता है अर्थिंग की वायर का। कभी कभी क्या होता है कि सेफ्टी मेजर के लिए ऐसे अप्लायंसेस में, जैसे कि जिनकी मेटलिक बॉडी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया या फिर टोस्टर हो गया या फिर टेबल फैन हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, इनकी मेटलिक बॉडी होती है, तो इसी से क्या होता है कि अगर कभी इनके अंदर करंट की लीकेज हो जाती है तो इन केस आप टच में आ जाएं उन अप्लायंसेस के, तो आपको बहुत भारी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसीलिए अर्थिंग की वायर इन अप्लायंसेस से जोड़ते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इस वायर की, अर्थिंग वाली वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि इसके थ्रू बहुत आसानी से जितना भी एक्सेस करंट लीक हो गया है वो सारा का सारा इससे पास होकर के धरती के अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 238 पर और यहाँ पर आप देखो फिगर 13.20। इसमें आप लोगों को एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम में आपको बताया कि किस तरीके से अर्थिंग वायर है जो सभी अलग अलग अप्लायंसेस से जोड़ी गई है, जिन अप्लायंसेस में कंडक्टिंग मटेरियल है उनकी कंडक्टिंग बॉडी है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिखाया गया है कि मेन्स से सप्लाई कैसे आती है, मेन्स के अंदर सप्लाई आती है तो एक रेड कलर की वायर होती है, एक ब्लैक कलर की वायर होती है, और हमारे मीटर के अंदर बिजली को पहुंचाने के पहले फ्यूज से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद मीटर से गुजर करके जो वायर निकल रही है उसको हम मेन स्विच से जोड़ते हैं। ये स्विच जो है इससे हम लोग अलग अलग वायर्स ले जाते हैं और अलग अलग कमरे के अंदर हम लोग बिजली का कनेक्शन करते हैं। सिमिलरली आप एक और बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो घर के अंदर कनेक्शंस की गई हैं ये देखने में आपको कैसी लग रही हैं, सीरीज में लग रही हैं कि पैरेलल में लग रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी की सभी जो कनेक्शंस घर के अंदर की गई हैं, मेन स्विच के आगे की ओर पहले मीटर लगाया है, उसके बाद मेन स्विच लगाया है, उसके बाद घरों के अंदर कनेक्शन की गई है। तो घरों के अंदर जो कनेक्शन की जाती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है। तो पैरेलल में कनेक्शन होने की वजह से हर एक अप्लायंस या फिर जो हर एक कनेक्शन करी गई है हर एक कमरे के अंदर, उन सभी को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। साथ में आप एक और बात देख पा रहे हैं कि जो ये रेड कलर की वायर है और ब्लैक कलर की वायर है, ये रेड कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर हर एक जगह पर सेम दिख रही है हम लोगों को, यानी कि हर एक अप्लायंस को एक रेड कलर की वायर मिलती है, एक ब्लैक कलर की वायर मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेन से जो करंट आ रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है मेन सप्लाई से, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, करंट नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है मेन सप्लाई से, वो हर एक हमारे अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। और यहाँ पर हर एक अलग अलग सर्किट बनाया गया है, तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम किसी एक अप्लायंस को ऑफ कर सकते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर देगा, या फिर हम चाहते हैं कि हम दूसरे अप्लायंस को ऑफ कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास हर एक अप्लायंस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ सेपरेटली करने की सुविधा होती है। और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सुविधा आपके पास केवल तभी हो सकती है अगर आपने पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है। अगर आपने अप्लायंसेस को सीरीज में जोड़ा होता तो अगर आप किसी एक अप्लायंस को बंद कर देंगे तो सीरीज का कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसी बात की वजह से पैरेलल में कनेक्शन करते हैं ताकि हमारे जो अप्लायंसेज हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकें, सेपरेटली यूज कर सकें, किसी एक को ऑन कर सकें, दूसरे को ऑफ कर सकें। अब यहाँ पर आती है बात फ्यूज की। एक फ्यूज, मेन फ्यूज तो आपने लगाया हुआ है मीटर बोर्ड के अंदर बिजली का सप्लाई होने के पहले ही, तो ये तो एक फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि लगाया जाता है हर एक घर में। दूसरा फ्यूज क्या होता है कि वो अलग अलग अप्लायंसेज जो आप यूज करते हैं उनमें भी सेपरेटली लगा होता है। इससे फायदा ये होता है कि मान लो कभी अगर करंट की सप्लाई आ गई है और ये करंट की सप्लाई फ्लक्चुएट करके आपके अप्लायंस तक किसी कारण अगर पहुंच चुकी है तो क्या होगा कि आपके अप्लायंस तक वो फ्लक्चुएटिंग करंट नहीं पहुंचेगी। अगर जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके अप्लायंस की उससे ज्यादा अमाउंट की अगर करंट आ गई है तो उससे क्या होता है कि आपका अप्लायंस खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये फ्यूज जो होता है ये काफी हेल्पफुल होता है। उसके अंदर जितनी रेटिंग है हमारे फ्यूज की, उससे एक्सेस में अगर करंट आता है तो आपको पता है कि वो मेल्ट कर जाएगा, उससे क्या होगा कि सर्किट ब्रेक कर जाएगा और आपके अप्लायंस के अंदर वो मैक्सिमम करंट नहीं पहुंचेगी, तो अप्लायंस खराब नहीं होगा, बस खाली फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। अब ये जो एक्सेस करंट है इसके पहुंचने के अलग अलग कारण होते हैं। एक्सेस करंट पहुंचने को हम ओवरलोडिंग भी कह देते हैं। ओवरलोडिंग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि हमारा लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में आ गया है किसी कारणवश। हो सकता है कि इंसुलेशन जो है वायर्स की वो डैमेज हो गई है, बहुत पुराना वायर हो गया था तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर ये आपस में चिपक गए हैं, तो उसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है और हमारे अप्लायंस खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है कि अब्रप्टली करंट इंक्रीज कर जाता है और अप्लायंस जो है वो जल जाएगा, तो इसीलिए फ्यूज लगाना जरूरी होता है। और वो सिचुएशन जिसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में चिपक जाएं, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। ओवरलोडिंग कभी कभी तब भी हो जाता है जब आप किसी एक सिंगल सॉकेट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है और आपके जो अप्लायंसेज हैं अल्टीमेटली वही खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सिंगल सॉकेट में एक ही अप्लायंस को प्लग इन करना चाहिए, मल्टीपल अप्लायंसेस को सेम सॉकेट में लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ओवरलोडिंग हो जाती है। आपके अप्लायंस के अंदर अब्रप्टली हाई करंट फ्लो करेगा, आपका अप्लायंस खराब हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया जा चुका है पहले भी, आप इसी आपके क्लास 10th में ही प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक मेटल का यूज करते हैं, एल्युमिनियम मेटल का यूज करते हैं फ्यूज वायर बनाने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एल्युमिनियम वायर की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही जरा सा भी हाई करंट आता है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो काम करने लगता है, और हमारी वायर जो है उसमें जैसे ही हीट प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, तो वो फटाफट से मेल्ट कर जाती है, सर्किट ब्रेक कर देती है, तो हमारे अप्लायंस के अंदर करंट नहीं पहुंचता और हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाता है, और हमें भी शॉक लगने से या फिर कोई एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें होकर के आपका चैप्टर फिनिश हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनको डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 238 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि हम लोग एक सेफ्टी मेजर तो हमारा फ्यूज होता है, हम फ्यूज यूज करते हैं। एक तो हम मीटर में करंट सप्लाई होने से पहले ही फ्यूज यूज करते हैं, और हम अलग अलग अप्लायंसेस में भी सेपरेट फ्यूज यूज कर सकते हैं। फ्यूज जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी कारण से अब्रप्टली हाई करंट आता है तो हमारा अप्लायंस खराब होने से बच जाता है, कोई एक्सीडेंट होने से बच जाता है, क्योंकि फ्यूज वायर ही मेल्ट कर जाती है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। दूसरा सेफ्टी मेजर है अर्थिंग। आप लोगों ने पढ़ा है अगर कभी किसी कारणवश मेटलिक अप्लायंसेस जो है, जिनकी बॉडी मेटलिक होती है, जैसे आपका कूलर हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर प्रेस हो गया, तो इनमें क्या होता है कि अगर कभी एक्सेस करंट आ जाए तो ये कंडक्ट करने लगती है, इनकी बॉडी कंडक्ट करने लगती है, जिससे आपको बहुत खतरनाक लेवल का बिजली का झटका लग सकता है। तो वो ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे अप्लायंसेस से अर्थिंग की वायर जोड़ते हैं, और ये अर्थिंग की वायर अल्टीमेटली आपके घर के बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर एक मेटलिक प्लेट से जुड़ी होती है, और इस वायर का, अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत लो रखा जाता है ताकि इसमें बहुत इजीली करंट फ्लो हो जाए, जितनी भी एक्सेस करंट है सारी की सारी धरती के अंदर चली जाए और जो यूजर है उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 kW पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट 220 volt दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 ampere, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। यहाँ पर आप लोगों को पावर बताई गई है, आपके जो ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, उसकी पावर रेटिंग बताई गई है 2 kW यानी कि 2000 watt है, और आप जो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर आपका ये इलेक्ट्रिक ओवन ऑपरेट कर रहे हैं वो कितना है, 220 वोल्ट है। तो ऐसे में आप पावर का फॉर्मूला यूज करते हुए, P इज इक्वल टू VI यूज करते हुए करंट की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करें, तो करंट की वैल्यू आ रही है 9.09 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, उसके थ्रू जो करंट पास कर रही है वो कितनी पास कर रही है, 9.09 एम्पियर, लेकिन जो हमारी करंट की रेटिंग है इलेक्ट्रिक ओवन की वो सिर्फ 5 एम्पियर है, यानी कि 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट हमारा इलेक्ट्रिक ओवन सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो फ्लो कर रही है करंट वो 9.09 एम्पियर कर रही है। इसका मतलब है कि हाई करंट फ्लो कर रही है, तो आपका इलेक्ट्रिक ओवन खराब हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, उसकी फंक्शनिंग खत्म हो सकती है। तो अगर तो आपने ओवन के अंदर फ्यूज लगाया हुआ है तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी, आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाएगा, ओवन बच जाएगा, लेकिन अगर फ्यूज वायर नहीं लगाया है तो डायरेक्ट आपका ओवन खराब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपके घर में ओवरलोडिंग ना हो, डोमेस्टिक सर्किट्स जो है उसमें ओवरलोडिंग ना हो। तो पहला तो ये कि आपके जो सॉकेट्स हैं उसमें मल्टीपल अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट के अंदर डालने की कोशिश ना करें, उससे ओवरलोडिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको बचाने के लिए अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग सॉकेट में यूज करना चाहिए, या फिर अगर कोई ऐसा अप्लायंस है जिससे आपको पहले से नोटिस हो रहा है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, पुराना अप्लायंस है, उसकी वायर्स खराब हुई हो सकती है, तो ऐसे अप्लायंस को भी आप सॉकेट में ना डालें, क्योंकि उससे भी ओवरलोडिंग हो सकती है। हो सकता है कि वायर्स जो है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, आपके बहुत पुराने अप्लायंसेस में वायर्स जो होती हैं वो खराब हो जाती है विद टाइम, तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि वायर्स जो है वो न्यू हो, प्रॉपर फंक्शनिंग वाली हो, क्योंकि अगर पुरानी वायर्स होंगी आपस में टच हो करके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाएंगी तो उससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं 18 questions उनको डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज कर लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।